ओम शांति। स्व उन्नति का साधन याद का चार्ट रखना। बाबा साकार मुरली में कई बार कह चुके हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति करने के लिए याद का चार्ट लिखते रहो, क्योंकि याद का चार्ट रखने से हमें बहुत लाभ होते हैं। पहला लाभ, याद का चार्ट रखने से मन बुद्धि पर हमारा फुल अटेंशन रहता है, क्योंकि योगाभ्यास में मन बुद्धि का मेन रोल होता है। तो इन दोनों शक्तियों पर हमारा पूरा अटेंशन रहता है। दूसरा लाभ, याद का चार्ट लिखने से मन बुद्धि को सारे दिन भर में कैसे बिजी रखें और कैसे डिसिप्लिन में रखें, ये कला हमें हासिल होती है। तीसरा लाभ, याद का चार्ट लिखते रहने से कितनी हमारी अविनाशी कमाई हो रही है यह हमें पता चलता है। चौथा लाभ, याद का चार्ट रखने से मन बुद्धि पर पूर्णतया हमारा नियंत्रण और अनुशासन रहता है। परिणाम स्वरूप स्वराज अधिकारी स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि संगम योग में जो स्वराज अधिकारी बनते हैं वही सतयोग त्रेता योग में औरों के राजा बनते हैं। और पांचवा लाभ, याद का चार्ट रखने से हम सदा उमंग और उत्साह से भरपूर रहते हैं। ब्राह्मण जीवन में स्वयं को सदा उमंग उत्साह से भरपूर रखना बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि जब हम उमंग उत्साह से भरपूर रहते हैं तो उड़ती कला की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में याद का चार्ट रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे याद है, मैं जब पहली बार मधुबन में बाबा से मिलने आया था 1973 में, तो हिस्ट्री हॉल अकेला हॉल था। तो हिस्ट्री हॉल में मैं मुरली के बाद पर्सनली बाबा से मिल रहा था, बहुत थोड़ा सा अंतर। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, दृष्टि देने के बाद पहला महावाक्य मेरे लिए उच्चारण किया, अगर आप ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते रहना। मैं एक साल का बच्चा था उस समय, याद का चार्ट क्या होता है ये मुझे पता भी नहीं था। दो तीन साल, तीन चार साल ऐसे ही बीत गए और जब मैं 1976 में यहां रहने के लिए आया, उस समय मैंने दादी जी के क्लासेस और बाबा की मुरलियों के आधार पर अपना हर एक घंटे का चार्ट बनाया और लिखता रहा। एक साल के बाद जब बाबा से पर्सनली मिलना हुआ, एक तरफ हिस्ट्री हॉल में नीचे बाबा आए थे गद्दी पर, मैं सामने बैठा था, एक तरफ दीदी मनमोहिनी जी बैठी थी और दूसरी तरफ प्रकाश मणि दादी जी बैठी थी। तो बाबा ने दीदी के तरफ देखते हुए कहा कि बच्ची, इस बच्चे का याद का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है। तालियां तो बजाओ ना जरा। ये बाबा के दो महावाक्य सुन पर मुझे ऐसी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था, नशा चढ़ गया है ना। एक उसके पीछे कारण था कि 3 साल का बच्चा था, मेरे मन में हमेशा एक संशय बना रहता था कि मैं जब याद करता हूं तो बाबा के पास मेरी याद पहुंचती है या नहीं, ये थोड़ा संशय था। तो जब बाबा ने कहा इसका याद का चार्ट अच्छा है, तो उसका प्रमाण मुझे मिल गया कि मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी। उसके बाद मेरे मन में कभी भी संशय नहीं आया कि मेरी याद पहुंचती है या नहीं बाबा को, पहुंचती बिल्कुल है। तो मैं लिखता रहा चार्ट का, याद का चार्ट मेंटेन करता रहा और बहुत अच्छी उन्नति अनुभव करता रहा। तो अभी याद का चार्ट आत्मा को स्मार्ट बनाता है। कैसे बनाता है भाई? वास्तव में मन बुद्धि ये आत्मा रूपी मां के दो बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे द्वापर युग से माया के संग में रहे हैं। और जो भी हमारे पास खजाने थे, वो मन बुद्धि ने सारे गवा दिए, आत्मा को कंगाल बना दिया, खोखला बना दिया। अब याद के चार्ट से मन बुद्धि को हम बिजी रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, कमाई करते रहते हैं और जो खोए हुए खजाने हैं पुनः प्राप्त करते हैं। और जितने खजाने हमारे पास बढ़ते जाते हैं, आत्मा स्मार्ट बनती जाती है ना भाई। तो आत्मा को माला माल बनाने का काम ये याद का चार्ट करता है। लेकिन याद का चार्ट रखने के लिए हमें एक बात याद रखना है कि यथार्थ याद किसको कहते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथार्थ रीति से बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं और याद करते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं। क्यों भाई ऐसा कहते हैं बाबा? तो यथार्थ याद अर्थात परम धाम में शिव बाबा को बाबा के बाजू में बैठकर याद करना, देखते रहना। बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को जब हम देखते हैं, सूक्ष्म अवतन में ब्रह्मा बाबा के ब्रुकुटी में शिव बाबा को देखना और मन मना भव का मंत्र का जाप करते रहना, या सूक्ष्म अवतन में या परम धाम में। लेकिन यथार्थ याद है परम धाम में बाबा को याद करना। क्यों भाई? बाबा तो हमारा बाप है, उसको तो हम कहीं पर भी याद कर सकते हैं। लेकिन यथार्थ याद अर्थात परम धाम में शिव बाबा को याद करना। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि तीनों लोगों में परम धाम ही एक ऐसा स्थान है जहां परमात्म मिलन में बहुत अच्छा अनुभव होता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई इधर उधर की वृत्ति नहीं है। बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां हमें परम धाम में होती हैं। इसलिए हमें परम धाम में बाबा को याद करने का चार्ट बढ़ाते रहना है। अभी याद का चार्ट हमें अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक लिखना है। तो अमृत वेले से हम शुरुआत करते हैं। अमृत वेले जैसे आपकी आंख खुलती है, आंख खुलने के बाद बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, और गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला संकल्प स्वमान का होना जरूरी है। स्वमान का कोई भी पॉइंट बुद्धि में लाएंगे तो उससे ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी और मन बुद्धि बहुत हल्की होगी, फुल्की होगी, और आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। आपके मन में सहज सुंदर शुद्ध और सकारात्मक संकल्प चलते रहेंगे। अमृत वेले आपके सदा बहुत अच्छी शुरुआत होती रहेगी। इसलिए दुनिया में कहते हैं वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत होना माना आधा काम पूरा होना। तो स्वमान का पॉइंट बुद्धि में जरूर लाना है जिससे आत्मा को नशा चढ़े, खुशी बने और हम बाबा की याद में मस्त हो जाएं। ठीक है, अभी चार से पांच एक घंटा हमें अभ्यास करना है। मन बुद्धि को काम देना है कि बाबा ज्ञान सूर्य हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, मैं आत्मा भी शक्तिशाली हूं, बाबा के पास बैठी हूं, बाबा से शक्तियां ले रही हूं और सारे संसार की आत्माओं पर डाल रही हूं। ऐसा हमें अभ्यास करना है। पहले थोड़ा समय हमें तो खुद को शक्तियों से भरपूर करना है। जब हम शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं उसके बाद बाबा से शक्तियां लेते रहें और सारे सृष्टि पर, ग्लोब पर, अनगिनत आत्माओं पर शक्तियों का शावर करते रहें तो अनेक आत्माओं को शक्तियां मिलती रहेगी। अब 60 मिनट में से कितना मिनट मैं इस स्थिति में स्थित रहा यह अंदाज आपको निकालना है। 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 10 मिनट, हमें किसी को ठगाना नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के कितना मैं बाबा की याद में रही आत्मा, तो जो अंदर से आवाज आएगा वो आप लिखना है। 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, धीरे धीरे उसमें भी करेक्शन आता रहेगा तो वो आप लिख दीजिए। फिर 5 से 6 एक घंटा दूसरा हमें मन बुद्धि को अभ्यास देना है कि बाबा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति सागर से शांति की किरणें, शांति का शावर मुझ आत्मा पर आ रहा है और मेरे द्वारा सारे संसार की आत्माओं की ओर जा रहा है। इस स्थिति का अभ्यास हमको बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। फिर चेक करना है एक घंटे के बाद कितना समय मैं इस स्थिति में स्थित रहा या स्थित रही, उसको लिखना है। फिर 6 से 8 ये मुरली के लिए हमें देना है। पहले आधा घंटा अपने को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, मुरली सुनने की पूर्व तैयारी करना है। उसके लिए सेवा केंद्र पर आधा घंटा बहने पहले हमें बुलाती हैं, योग में बिठाती हैं, ताकि मुरली सुनने के लिए मन बुद्धि तैयार हो जाएं और मुरली का हम भरपूर आनंद लें। उसकी तैयारी हमें पहले करना है। उसके बाद एक डेढ़ घंटा जो भी हमें मिलता है मुरली का रस हमें लेना है। मुरली है मस्तानी। मुरली जब हम सुनते हैं मुरलीधर की याद में, बाबा की याद में, तो मन वारूपी मोर हमारा झूमने लगता है, एक अलौकिक मस्ती चढ़ती है जैसे गोप गोपियों को चढ़ती थी। मुरली मुरलीधर की याद में सुनना है, एक साथ दो काम करने हैं। ये अभ्यास की बात है, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। आप अपनी क्लासरूम में जाते हैं, बहन जी यहाँ बैठी है, दीदी के हाथ में मुरली है, वो मुरली कहाँ से आई है? मधुबन में बाजे मुरली, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अर्थात कृष्ण की आत्मा के मुख के द्वारा वो मुरली बजाई है, वो दीदी के हाथ में है। तो हमें क्या करना है? ज्ञान सागर बाप से ज्ञान गंगा बहते बहते ब्रह्मा मुख से बहते बहते दीदी के मुख से बहते बहते आपकी आत्मा की तरफ आ रही हैं और आप ज्ञान स्नान कर रही हैं। इतना सुंदर अनुभव होता है, आप बात मत पूछो। मुरली भी सुन रहे हैं और मुरलीधर का याद का भी आनंद ले रहे हैं। 6 से 8 हमें ये अभ्यास करना है, आनंद लेना है। तो मुरली से ज्ञान रत्न भी हमें बहुत मिलते हैं, आत्मा ज्ञान रत्नों से एकदम भरपूर हो जाती है और एक अलौकिक मस्ती चढ़ती है। वो अलौकिक मस्ती योगाभ्यास में 4 चांद लगाती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाएंगे। कभी सोचा था भाई? कभी सोचा था भाई? तालियां तो बजाओ फिर जरा अच्छी तरह से। स्वप्न में भी नहीं सोचा था निराकार भगवान हमें साकार रूप में आकर पढ़ाएंगे। और वो पढ़ाते भी कैसे हैं? बड़े प्यार से, बड़े मधुरता से, मधुर शिक्षाओं से हमें सजाते हैं और ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करते हैं। डायमंड हॉल में बाबा आते हैं, मुरली चलाते, हर एक अच्छी तरह से मुरली लिखता है, इतना अच्छी तरह से बाबा बोलते हैं, धीरे 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 गति से। आजकल के जो लेक्चर होते हैं ना, बड़बड़ 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 आके बता देते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में आया नहीं आया कोई बात नहीं, मुझे तनख्वाह मिल गई, बात खत्म, ऐसे टीचर है। और हमारा टीचर, बापरे बापरे, कितना प्यार से और कितना शांति से, मस्ती से हमें सुनाते हैं, मुख से ज्ञान रतन देते हैं और दृष्टि से सकार देते हैं ताकि उसको हम स्वरूप में ला सकें। उसके लिए हमें शक्तियां भी दृष्टि के द्वारा प्रदान करते हैं। कितने हम भाग्यशाली हैं, है ना भाई? 8 से 9 हमें किसी ना किसी सोमान में स्थित रहने का अभ्यास करना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी आत्मा इसमें साधारण नहीं है। भले गांव से माता आई होगी लेकिन बहुत महान आत्माएं हैं, करोड़ों में सिलेक्शन भगवान ने किया हुआ है। इसलिए बाबा ने उस महानता में स्थित होने के लिए बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है। इसलिए हमें समान का टाइटल देना है और उसको आत्मा के साथ जोड़ना है और बहुत अच्छी तरह से अलौकिक मस्ती, नशा, ऐश्वर्य नशे की अनुभूति हमें करते रहना है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं आत्मा शिव शक्ति हूं, मैं आत्मा पूर्वज आत्मा हूं, राज ऋषि आत्मा हूं, कोई ना कोई टाइटल आत्मा के साथ जरूर जुटा रहे, तभी हमें एक ईश्वरीय नशे की अनुभूति होगी और हम सारे दिन भर में एक मस्ती में चढ़ते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे। ठीक है, 9 से 10 हमें 1 घंटा, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन दिल से बाबा को शुक्रिया देते रहना है। मुझे दाता तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिल से बाबा को शुक्रिया दें। बाबा हम कहां थे, कचड़े के गंदगी में पड़े थे, आपने हमें कहां बिठा दिया भाई। बाबा ने हमें दिल तख्त पर अपने बिठा दिया, भगवान ने अपने दिल तख्त पर बिठा दिया। कितने भाग्यशाली है भाई, कहां रहते हैं, दिल्ली में कोई ईंट और पत्थर के मकान में नहीं रहते हैं, हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। बाप रे बाप रे, कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल हमें पालना मिल रही है। तो दिल से हमें शुक्रिया देते रहना है, देना है, दिया है ना उस दाता ने। तो जैसे शुक्रिया करते रहेंगे, बाबा के पास वो शुक्रिया पहुंचता जाएगा, हमें बहुत उसकी खुशी मिलती जाएगी। 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 एक घंटा हमें टाइम मिलता है, बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन मुरली पर करना है। जो मुरली सुनते समय कुछ पॉइंट हमारे दिल को टच होती हैं, दिल को छू लेती हैं, ऐसे पॉइंट हमें नोट कर डायरी में नोट करना है। और जब समय मिलता है 10 से 11 एकांत में बैठकर मनन चिंतन उस पर जरूर करना है। जो बुद्धि रूपी टिफिन बॉक्स में भोजन भरते हैं ज्ञान का, उस भोजन को हमें जरूर हजम करना है, ताकि शक्ति ज्ञान की शक्ति ज्ञान का बल हमें मिलता रहे। और जितना ज्ञान का बल बढ़ता है, उतनी आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। नहीं तो स्टेज फियर हमारे में होता है, जब हम स्टेज पर जाते हैं थोड़े से कांपने लगते हैं, डर रहता है, पता नहीं सभा में से कोई आत्मा हमें ऐसा प्रश्न पूछेगी और उसका जवाब हमारे पास नहीं होगा तो हमारा अपमान होगा, ये डर रहता है। वो स्टेज फियर भी खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास और साहस मनन चिंतन के अभ्यास से बढ़ता है। मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन करते हैं, माया का पूर्णतया नामो निशान मिटा देते हैं। ये मनन करने वाले ही कर सकते हैं काम। 11 से 12 हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से खुदा को दोस्त के रूप में अनुभव करना है। ये खुदा मेरा दोस्त बन चुका है, मैंने उसके साथ पवित्रता का प्रमिज किया है और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। ये प्रॉमिस मुझे अच्छी तरह से निभाना है, दोस्ती को गहरा करना है, क्योंकि अंतिम समय आपको लौकिक अलौकिक कोई साथ नहीं देंगे, लेकिन आपका जो दोस्त है खुदा, नंगे पैर भागा भागा आपके मदद करने के लिए आएगा। इसलिए खुदा के साथ मेरी दोस्ती बहुत गहराई से बढ़ाते रहना है। इसलिए एक घंटा हमें ऐसा अनुभव करना है, दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, खेल रहे हैं, उसके साथ हम दिल की लेन देन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से खुदा के साथ दोस्ती अनुभव करना है। ठीक है भाई, अच्छी तरह से, क्योंकि यही दोस्त हमारे काम में आना है। असली दोस्त मेरा यही है, 50 दोस्त है, कुछ बहुत मुश्किल में है, जो बहुत नजदीक वाला है उसको ही फोन कटकटाएंगे, बाकी दूसरे फोन उठाएंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं, मदद करना तो दूसरी बात है। तो यही मेरा दोस्त है जो मुझे अंत तक साथ निभाएगा, साथ देगा। ठीक है, बाद में 12 से 1 कितना हुआ, 11 से 12 हो गया, अभी 12 से 1 हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से कर्म योगी जीवन अनुभव करना है। कर्म और योग साथ में अनुभव करना है, कर्म अलग योग अलग ना हो, लेकिन मुझे योग युक्त कर्म करना है। इस बुद्धि को, ये पॉइंट बुद्धि में रहने से विशेष बाबा की याद में कर्म करते रहेंगे और आपका चार्ट बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा। फिर एक से दो आपको ये अनुभव करना है, मैं पवित्रता की देवी हूं या मैं पवित्रता का अवतार हूं। जहां मैं जाता हूं पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाता हूं। पवित्रता के सागर ने मुझे ये ड्यूटी दी है, जाओ इस संसार में पवित्रता की खुशबू फैलाते रहो, पवित्रता की सुगंध फैलाते रहो। ये हमें ड्यूटी दिया है, वो ड्यूटी हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं, ऐसा सुंदर अनुभव आपको करना है। ठीक है भाई, दो से तीन आपको दिल्ली से मधुबन में आना है, सूक्ष्म रीति से हर रोज आना है और चारों धाम करने हैं। इस साकारी दुनिया में हम सभी का घर कौन सा है? मधुबन है। बा परम धाम तो बात का घर है, लेकिन साकारी दुनिया में मधुबन है। तो सूक्ष्म रीति से आवे और चारों धाम बहुत अच्छी तरह से हमें करते रहना है। शांति स्तंभ जाके बाबा से मिलो, फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ, फिर बाबा के रूम में जाओ, बाबा से बातें करो, झोपड़ी में जाओ, बहुत अच्छी तरह से ये चारों धाम हर रोज करना है। इससे क्या होगा? बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, मधुबन से हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। मधुबन से प्यार माना मधुबन वाले बाबा से प्यार बढ़ना, ठीक है ना? तो ये अभ्यास करते जाना है हमको बहुत अच्छी तरह से। बाद में तीन से चार स्वदर्शन चक्रधारी बनना है या पांच स्वरूप का अभ्यास करना है। स्वयं का दर्शन चारों युगों में कैसा हो रहा है या पांचों स्वरूप का अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से करना है, तो हमें खुशी अनुभव होती रहेगी, नशा अनुभव होता रहेगा। और अगर समझो माया हमारे सामने आती भी है तो माया का भी गला हम से चक्र से काट सकते हैं, स्वदर्शन चक्र से काट सकते हैं। इसलिए स्वदर्शन चक्र धारी माना धारण करना अर्थात उसका स्वरूप बनना, ऐसा अभ्यास हमको करते रहना है। चार से पांच बाबा ने आपको सूक्ष्म वतन में विशेष निमंत्रण दिया है, वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाबा ने अरेंज की है और आप बहुत महान आत्माएं हो, स्पिरिचुअल इंजीनियर हो, बाबा ने आपको खास सेवा के प्लान करने के लिए बुलाया है और आप बाप दादा के सामने बैठी है, एकदम शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे हैं और आप फरिश्ता स्वरूप में एकदम सामने बैठी हैं, तो बाबा से सकाश भी ले रही है, दृष्टि भी ले रही है और बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग भी बुद्धि की चल रही है, नए नए सेवा के प्लान भी कर रहे हैं। तो ऐसे बैठेंगी तो बाबा आपको सेवा के प्लान भी कराते रहेंगे, दिलाते रहेंगे, टचिंग देते रहेंगे और बाबा की याद भी बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। बाद में पांच से छह हमें अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। एकांत में बैठकर आत्मा के भान में हमें तपाना है, एकांत में बैठकर आत्मा के अभ्यास को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है और यही हमारे ब्राह्मण जीवन का जड़ है। कहते जड़ है तो झाड़ है, जड़ नहीं तो झाड़ नहीं। तो आत्मा का अभ्यास अगर हमारा पक्का होता जाएगा तो बाबा की याद बहुत अच्छी तरह से हमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, क्योंकि बाबा की याद आ जाती है। ताली बजाओ ना जरा अच्छी तरह से। क्या है, किसी किसी की आंख बंद हो जाती है ना, वो फट से अलर्ट हो जाती है हाथ ताली बजने से, सुस्ती आती है ना कभी कभी। तो कौन सा चल रहा है हमारा? अशरीरी स्थिति का अभ्यास। ये मधुबन में आप पहुंचे हुए हैं, इस विश्व के ग्लोब पर सबसे बढ़िया स्थान ये मधुबन है। यहाँ जो भी अनुभव करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो इसका लाभ हमें लेना है, अशरीर स्थिति का अभ्यास, इस देह रूपी वस्त्र को एकदम भुला देना है, एकदम उतार देना है और स्वयं को मैं हूं देह से न्यारा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा ऐसा अनुभव करते जाना है। बाद में 6 से 7 हमें परम धाम में बाबा के पास लवलीन स्थिति की अनुभूति करना है। बाबा कहते जब तक लवलीन स्थिति की अनुभूति नहीं करते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। तो प्यार के सागर में हम डूब जाएं तो आत्मा में जो भी कचड़ा गंदगी बदबू है उस सागर में सारी समा जाती है और आत्मा एकदम क्लीन बन जाती है, कांचन बन जाती है। तो 1 घंटा इसका अभ्यास करना है। फिर 7 से 8 हमें बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है। इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज मैं निराकार बिंदु आत्मा और मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा आमने सामने बैठे हैं और निर्संकल्प स्वरूप में बैठना है, समाधि में बैठना है, ऐसा अनुभव करना है। बाबा से अथाह शक्तियां मौज आत्मा में आ रही हैं, ऐसा केवल अनुभव करना है। इसको कहते हैं बीज रूप स्थिति की अनुभूति करना। हाँ जी, इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है आत्मा, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है परमात्मा। तो बीज कैसा होता है? कॉम्पैक्ट होता है। तो कॉम्पैक्ट रीति से बैठना माना मन में बिल्कुल संकल्प नहीं चले, निर्संकल्प शक्ति स्वरूप में हमें बैठना है, केवल अनुभव करना है। ज्ञान सूर्य बाबा से, शक्तियों के सागर बाबा से है, अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है, केवल अनुभव करना है। इसमें योग की अग्नि प्रज्वलित हो रही है ऐसी अनुभूति हमें होती है, उसमें हमारे विकर्म भस्म हो रहे हैं ऐसी अनुभूति बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए इसको बीज रूप स्थिति कहते हैं या ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं। इसमें ही हमारे पाप कर्म भस्म होते हैं, और स्थितियों में पाप कर्म बनते नहीं हैं, लेकिन इसमें बने हुए भस्म हो जाते हैं, दगद हो जाते हैं। ठीक है, कोई संकल्प नहीं करना है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना एकदम निर्संकल्प हो जाते हैं, और निर्संकल्प होके ऐसा लास्ट जो संकल्प होता है इसके स्वरूप में हम टिकते हैं और ऐसा अनुभव होता है बाबा से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है, मैं आत्मा उसको ग्रहण कर रही हूं। ठीक है, 9 से 10, 8 से 9 हमें क्या करना है? दिव्य गुण का, कोई ना कोई दिव्य गुण का अभ्यास करना है। मोज जीवन रूपी पेड़ पर, मेरे जीवन रूपी पेड़ पर सभी दिव्य गुणों के फल और फूल लगे रहे, लदे रहे। जो भी लिस्ट जो को हिस्ट्री हॉल के सामने दिव्य गुणों की लिस्ट लगी है, 34 गुण हैं, ये हरे गुण को मेरे जीवन रूपी पेड़ पर लगाना है, धारण करना है। एक गुण भी मैंने मिस नहीं करना है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, सर्वशक्तियों से संपन्न बनना। तो इसलिए दिव्य गुण पर हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। दिव्य गुण है धैर्यता है, हर्षित, हाँ उसको अच्छी तरह से मनन करो और उसको ज्ञान का विस्तार में जाओ, फिर उसको धारण करो। युक्ति प्लस शक्ति इजुगल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है, योग से हमें शक्ति मिलती है। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति होती है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। दिव्य गुण हमारे जीवन में स्वतः ही धारण होते हैं। फिर 9 से 10 हमें बाबा को सारे दिन का चार देना है। किसी को हमने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया है, कोई छोटी मोटी भूल हो जाती है, वो बाबा को बता देना है और स्वयं को हल्का अनुभव करना है। और सारे दिन भर में इतने घंटे में आपने अलग अलग जो अभ्यास किया हुआ है उसमें कितनी बाबा की याद रही है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से जोड़ना है, उसको ये करना है, उसका हिसाब रखना है। और समझो आपने 4 घंटा किया, बाबा को सारे दिन भर में याद किया, तो संकल्प लेना है कल मैंने इसको बढ़ाना है, क्योंकि संकल्प करते हैं लक्ष्य तो लक्षण हमारे में आने लगते हैं। तो धीरे अर्कर कम हो गया है तो उसको बढ़ाना है, बढ़ाते हैं तो और उसको अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। तो ये काम हमें करना है। और 10 सुबह 10 बजे 10 माना बस, जानकी दादी जी का स्लोगन है। उसके बाद हमें टीवी भी नहीं देखना है, इधर उधर की बातें भी नहीं करना है, सो जाना है, बस कुछ नहीं देखना है, मोबाइल भी नहीं देखना है, और बाबा की याद में सोना है, विधि पूर्वक सोना है, ब्रह्मा बाबा की माँ की गोदी में सोना है। बाबा ने बहुत सुंदर खटिया मेरे लिए रखी है, बना के हैं, उस खटिया पर ब्रह्मा माँ बैठी हैं और मैं छोटे बच्चे के रूप में या बच्चे के रूप में बैठी हूँ, मेरा सिर बाबा की गोदी में है, बाबा मुझे जेंटल मसाज दे रहे हैं, सारे दिन की थकान मेरी मिट गई है, और माँ से अलौकिक मीठी मीठी रोरेहान करते करते गुड नाइट बाबा। और जैसी आंख खुल जाती है गुड मॉर्निंग बाबा, तो ऐसे गुड नाइट और गुड मॉर्निंग विधि पूर्वक करेंगे तो वो भी बाबा कहते हैं योग के चार्ट में लिख सकते हैं, बाबा ने कहा है। और ऐसी विधि पूर्वक सोते हैं तो इधर उधर के स्वप्न हमें नहीं पड़ते हैं, एकदम साउंड स्लिप आती है और उस साउंड स्लिप में तन और मन हमारा फ्रेश हो जाता है। मैंने बताया ना, बाबा की गोदी में सोना है और बाबा से मीठी मीठी रोरेहान करना है, और रोरेहान करते 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 गुड नाइट करना है। सो गए, फिर आप 4-5 घंटा सो गए, फिर आपकी जैसी आंख खुल गई तो आप कहाँ सोए, बाबा की गोदी में सोए, आपके सामने बाबा है तो बाबा गुड मॉर्निंग कर दिया, फिर गुड मॉर्निंग पढ़ने के बाद सोमान का संकल्प लेना है, तो इसको भी याद के चार्ट में आप जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमें विधि पूर्वक याद का चार्ट रखना है और धीरे धीरे उन्नति की ओर आगे बढ़ना है। बीज रूप स्थिति में 2 बातें आती है, मैं भी और बाबा भी। आत्म अभिमानी स्थिति में केवल 1 बात आती है, केवल मैं आत्मा हूं, इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज आत्मा हूं, बस। बीज रूप माना मैं और बाबा परमधाम में बैठे हैं, उसको बीज रूप स्थिति कहेंगे, ठीक है। अभी हम बहुत पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे, हमारे पास केवल 10 मिनट है, अभी बहुत लंबा टॉपिक है माता जी। अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति, विदेही स्थिति, ये सारे शब्दों का खेल है, बाकी है निराकारी स्थिति, आत्मा खुद को समझना। तो बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा यहाँ देखना है, आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और उसमें स्थित हो जाना है और उसके अनुभव को बढ़ाते जाना है, बुद्धि से देखना है और उसमें स्थित हो जाना है। चलो अच्छी तरह से सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। बाबा ने कहा है अगर आप बाबा को गुड मॉर्निंग करके गुड नाइट करके सोए हैं और वो बहुत अच्छी तरह से सतपदान दिन में सोए हैं तो आप योग के चार्ट में लिख सकते हैं, बाबा ने मुरली में कहा है, ठीक है। ओम शांति। चलो सभी थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा एक दो को टच नहीं होना चाहिए शरीर, खुले बैठो, कॉपी पेन डायरी सब हटा दो, एकदम आजाद पंछी बन जाओ। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य ज्योति इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती भी जा रही हूं जा रही हूं इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओह फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे। बाप दादा मौज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ
विचार ही हो, ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गए, जहां चारों सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, ओह मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबली, मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है, मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा के सुंदर छवि को निहार, बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बाबा ही बाबा है, बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है, ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्ति शाली किरणों की वर्षा मोज आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही। मैं आत्म ज्योति महाज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं, योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे, भस्म होते ही जा रहे हैं, मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ, मैं आत्मा सूरज मुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को संपूर्ण एकाग्रता से देख रही हूँ, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ, तपो बल जमा कर रही हूँ, में वाह मेरे बाबा वहां मेरा भाग्य, भाग्य विधाता बाप से मैं आत्मा खजाने लूट रही हूं और लुटा रही हूं, शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, और इस साकारी दुनिया में इस शरीर पी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा चैतन्य ज्योति के रूप में विराजमान हो चुकी हूँ, मोज आत्म ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों फैल है, फैलता ही जा रहा है, मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मोज चैतन्य हीरे से चारों फैल रही है, ओम शांति शांति। शांति।
वो याद आए